सभी रोज अपने घर में इस बात को याद किया करना कि हमारा भाग्य कितना महान है जो हमारे घर में स्वयं भगवान मेहमान बनकर आते हैं, यहां भी आते हैं और आपके घरों में भी आते हैं। आते हैं, पता है आपको, जब भी आप बाबा को बुलाएंगे बाबा तुरंत आ जाएगा। इस स्वर्णिम अवसर का फायदा उठाएं। एक बहुत अच्छा स्लोगन अपने पास रख लें, भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। जान ले सत्य को, मेहरबान हुआ है तो हम कैसे उसका फायदा उठाएं, कैसे फायदा उठाएं, सब चिंतन करेंगे। कोई भी श्रेष्ठ अवसर मिलता है, सहज प्राप्ति होती है, तो मनुष्य चाहता है उसका हम पूरा फायदा उठा लें। त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा ने मुरली चलाते हुए आखिर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, सभी इसको सहज भाव से इस तरह ख्याल में रखेंगे, जहां त्याग है वहीं तपस्या है, और जहां त्याग और तपस्या का बल है वहीं सेवाओं में सहज सफलता है। हम सेवाएं कर रहे हैं, विश्व को बदलने का काम बाबा ने हमें दे दिया है। सुन रहे होंगे कल सवेरे भी सभी, जैसे अव्यक्त बाबा ने परसों कहा, बाप भी जब अकेला रहता है तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे घर में मां बाप अकेले रह जाएं, बच्चे कोई भी ना हो तो मां बाप को अच्छा लगता है, और घर में सब बच्चों की रिमझिम हो तो मां बाप भी आनंदित रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा, मुझे तुम बच्चों के सिवाय अच्छा नहीं लगता, हम भी दिल से कहें बाबा हमें भी आपके सिवाय मजा नहीं आता, पसंद है, सब अपने दिल से जरा ये आवाज निकालें। तो बाबा एक बहुत सुंदर बात साकार में कहते थे, बच्चे ये बात आप बहुत याद करें अपने जीवन में। जब मैंने सुनी थी ये तो मैं कई साल तक इसको बहुत याद करता था। बाबा ने कहा, तुम दो युग तक देवताओं के साथ रहे, पिछले दो युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहकर देखो, आनंद आएगा। याद करते ही बुद्धि उड़ जाएगी ऊपर, मनुष्यों के साथ रहकर देख लिया, सबने देख लिया, अंतिम जन्म में भी जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपको ठुकरा के चले जाते हैं, जिनसे मनुष्य बहुत प्यार करता है वो कष्टदायक बन जाते हैं, जिनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है वही योग को तोड़ने वाले बन जाते हैं, ये सब देख लिया सबने, अब भगवान के साथ रहकर देखना है। तपस्या, योग अर्थात मन बुद्धि से भगवान के साथ रहना या उसको अपने साथ रखना, दोनों साथ रहें, ये योग है। मैं पहले योग के बारे में आपको थोड़ी सी बात कह दूं, भक्ति में भी हम सभी भगवान को बहुत प्यार करते रहे, उसका गुणगान करते रहे, परंतु कमी क्या कहां रह गई? आपको ये बात दूसरों को समझाने में भी बहुत काम आएगी। भक्ति में वेद शास्त्र, दर्शन, पुराण सब रहे हमारे पास, लेकिन एक ही चीज की कमी रह गई, किसी को भी भगवान के स्वरूप का पता नहीं चला। वो कहां रहता है इसका पता नहीं चला तो कह दिया सब जगह रहता है, रूप का पता नहीं चला तो कह दिया नाम रूप से न्यारा है। तो क्या हो गया? इसे एक बात पे सभी ध्यान देंगे, मन को तो परमात्मा से जोड़ा, उससे प्यार किया, चाहे श्री कृष्ण के रूप में किया, किसी ने विष्णु के रूप में किया, किसी ने श्री राम के रूप में किया, किसी ने महादेव के रूप में किया, मन से तो उससे जुड़े रहे, परंतु बुद्धि उससे नहीं जुड़ी। बुद्धि है ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये नेत्र जब तक शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर नहीं होगा, आत्मा पावन नहीं बनेगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए योग अभ्यास की सफलता में सभी ध्यान दें, बुद्धि के नेत्र को परम धाम में बाबा के स्वरूप पर स्थिर करना है। इसकी प्रैक्टिस सभी बढ़ाएंगे और मैं आप सभी को कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस 10-10 सेकंड से प्रारंभ करें। आप ये ना सोचिए मुझे आधा घंटा योग में बैठना है तो बुद्धि को बाबा पर स्थिर कर दूं, वो भी संभव है, एक घंटा भी संभव है, 3 घंटे भी संभव है, लेकिन प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए 10 सेकंड से प्रारंभ करेंगे। 10 सेकंड आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि लगाएं, बिल्कुल आत्मा को जैसे हम देख रहे हैं, जैसे कोई चीज नैनों से देखी जाती है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप को बुद्धि नेत्र से देख रहे हैं। फिर 10 सेकंड शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को लगा दे, जैसे यहां बैठे उसको देख रहे हैं। ये ड्रिल करते रहें, फिर 10 सेकंड आत्मा पर, 10 सेकंड शिव बाबा पर, फिर इसको बढ़ा दें 20 सेकंड, 30 सेकंड। इससे बुद्धि की एकाग्रता बहुत बढ़ती जाएगी, तो मन सुंदर संकल्पों से भरा हो और बुद्धि स्वरूप पर स्थिर हो, यह है योग की संपूर्ण सफलता। आप सभी ने सुना ही होगा हमारी योग साधना की बहुत सुंदर एक और साधना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। इन 5 स्वरूपों के अभ्यास को हम टोटल स्वदर्शन चक्र कहते हैं। आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि लगे, फिर हमारा जो आदि स्वरूप है देव स्वरूप, हमारा देव स्वरूप बुद्धि से हम देखने लगे। प्रैक्टिस करेंगे सभी, पहले जन्म में हम ऐसे थे, वो स्वरूप सामने आने लगे, तो योग बहुत सफल होगा। और सभी सूक्ष्म सिद्धांत को याद रखेंगे, जिस स्वरूप पर हमारी बुद्धि स्थिर होगी, ध्यान से सुन लें सभी, जिस स्वरूप पर हमारी बुद्धि स्थिर होगी उसके गुण, संस्कार, शक्तियां, प्योरिटी सब हमारे अंदर आने लगेगी। ये सभी को अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बढ़ानी है, हमें सेवाएं करनी है। आज तक हम साक्षी होकर देखें, हमने देखा है, आप भी देख सकते हैं, जहां सेवा करने वालों में त्याग और तपस्या का बल है वहां सेवाएं निर्विघ्न रूप से सफल होती हैं, और जहां ये दोनों बल नहीं हैं वहां कभी सेवाएं बढ़ेंगी फिर घटेंगी, बाधाएं आएंगी, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल जाएंगे। तो हमें सेवाओं में भी बहुत कुछ करना है। थोड़ा सा ध्यान दें सेवाओं पर, आप सभी सेवाओं में बाबा को योगदान कर रहे हैं। कर रहे हैं सभी? हाथ उठाएंगे जो कर रहे हैं, बाकी माताओं ने समझा नहीं, सभी कर रहे हैं। धन से भी करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं यज्ञ की, मन भी बाबा में लगाए रखते हैं, ये यज्ञ मेरा है। वारिसात्मा की सबसे पहली पहचान, जैसे बाबा मेरा है उसका कार्य भी मेरा है, उसका यज्ञ भी मेरा है, इस कार्य से मेरापन हो जाना ये सेवा का आधार है। याद रखेंगे जो आत्माएं संगम युग पर भगवान को सहयोग करती हैं, वो भगवान को बांध लेती हैं विनाश काल में सहयोग करने के लिए और द्वापर युग से सहयोग करने के लिए। द्वापर युग में हमें सब कुछ भूला हुआ होगा, लेकिन हमारी आवाज भगवान तक पहुंचा करेगी, क्योंकि जब वो इस धरा पर स्वर्ग रचने आया था तो हम उसके साथ थे, हमने उसकी सुनी थी, द्वापर युग से वो हमारी सुनता रहेगा। मैं हंसी में एक बात कहा करता था अपने भाई बहनों को, जो कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बाबा हमारी नहीं सुनता। अब भी कोई कोई आते हैं मेरे पास भी, कहते हैं बाबा सुनता नहीं है। मैं उनकी सब बात सुन के उनसे पूछता हूं, आप कितनी सुनते हैं बाबा की? सालों साल हो गए भगवान को कहते कहते। बाबा परेशान होता है, 30 साल हो गए यही सिखा रहा हूं इन्हें, फिर भी सुधरते नहीं हैं। कभी कहता है छोड़ो इन्हें, ये सुधरने वाले नहीं हैं। बाबा के गुणों में मैं ये एक गुण और जोड़ा करता हूं, वो धैर्य का भी सागर है। कैसे धैर्य चित्त होकर हम सबकी पालना कर रहा है, तो बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है, जो इस समय जितनी भगवान की सुनेंगे द्वापर युग से उतनी ही उनकी सुनवाई होगी। विनाश काल में जब हमें बाबा के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी तब वो हमारी हर बात सुनेगा, और आप महसूस करेंगे हम अपने बाबा की सुनते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारी सुनेंगे। सीधा सा ये सिद्धांत सभी अपने जीवन में अपनाएं, याद करें, तो हम बाबा के इस महान कार्य में उसके साथी हैं। ये भी बहुत बड़ी नशे की बात है। कल बाबा कह रहे थे सवेरे संडे की मुरली याद करो, बाबा चाहे तो सेकंड में सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिवान है, उसके पास समस्त सिद्धियां होती हैं। वो कहे कि अभी बरसात हो जाए तुरंत होने लगेगी, वो कहे हिमालय राख बनकर उठ जाए एक क्षण लगेगा, वो कहे सातों सागर सूख जाएं फट से सूख जाएंगे, वो चाहे इस धरा पर स्वर्ग आ जाए कल ही आ जाएगा, परंतु उसने हमें सम्मान दिया, हमारे सहयोग को स्वीकार किया, हमें प्यार दिया बहुत, हमारी योग्यताओं का विकास किया, हमें आगे बढ़ाया और कहा तुम मेरे मददगार बच्चे हो। ये उसका प्यार भी है और बहुत बड़ा सम्मान भी है। तो वो अपना ये महान कार्य हम आत्माओं के द्वारा करा के हमें भाग्य भी दे देता है, हमें बहुत योग्य महान भी बना देता है। तो सभी इस सेवा में सहयोग अवश्य करें। मैं आपको सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं, किसी भी तरह का सहयोग। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, सहयोग निष्काम भाव से हो। यदि सेवाओं में कामनाएं हैं तो सेवा का पुण्य समाप्त होता रहता है, यदि सेवाओं का वर्णन है तो सेवाओं का पुण्य कम होता रहता है। सेवाओं में ऐसा हो, सेवाएं करते चलें और भूलते चलें, खुद भी याद न रखें मैंने इतना किया, बिल्कुल निष्काम भाव धारण कर लें। ये हमारे इस अलौकिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ दिव्यता होगी। समझती है ना बहने इस बात को? निष्काम भाव, मैंने सेवाओं में इतना सहयोग दिया तो मेरा सम्मान होना चाहिए, ये नहीं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं इशारे में कहता हूं। किसी एक भाई ने बहुत ज्यादा जगह दी एक जगह कि एक बड़ा आश्रम बना दो, यहां भट्टी चले और बहुत अच्छा कार्य चले। बन गया, बहनों ने, सब भाई बहनों ने मिलकर सहयोग से एक अच्छा स्थान तैयार कर लिया। यहां से कोई बड़े व्यक्ति वहां गए थे, ओपनिंग पर नहीं बाद में, बहने भीड़ भाड़ में भूल गई उसका परिचय कराना और वो इतना परेशान हो गया, इतना नाराज हो गया कि मुरली सुनने आना भी छोड़ दिया। फिर मैं गया तो मुझे काम दिया, इसको मना लो भाई। मैंने कहा लाओ, रुसे हुए को तो मनाना ही पड़ता है, बाप भी अपने बच्चों को मना लेता है। सेवाओं में सहयोग देना बहुत बड़ी चीज। जो स्थान हम निर्माण करें, एक कमरा भी आपने दिया, बाबा कहा करते थे साकार में, उसमें एक व्यक्ति भी वारिस निकल गया, तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। कोई बहुत बड़ा सेवा का कार्य करके यदि हमारी खुशी नष्ट हो जाए तो समझ लें हमारे पुण्य भी नष्ट हो गए। इसलिए बहुत गहरा सब्जेक्ट, निष्काम भाव से सहयोग करना। क्योंकि जिसको हम सहयोग कर रहे हैं वो ही हमें सहयोग के योग्य भी बनाता है। ठीक बात है या नहीं? जिसे हम सहयोग कर रहे हैं वो योग्यताएं वही हमें देता है। धन हमारे पास आया है, हम धन से बाबा की सेवाएं कर रहे हैं, हमें आनंदित होना चाहिए कि बाबा तुमने हमें योग्य बनाया, वह मेरा भाग्य कि मैं तुम्हारे इस कार्य में कुछ सहयोग कर सका। लेकिन मैंने किया, ये मैं का त्याग हमें करना ही होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहूं, पहले मैंने कही है और ये सबके बहुत काम आएगी, इसको आप संभालें अपने अंतर मन में। देखिए, धन कभी भी स्थिर नहीं होता, आज वो एक के पास है कल दूसरे के पास होगा। जो धन आपके पास है आज, हो सकता है वो थोड़े समय में आपका साथ छोड़ जाए, किसी और के पास हो। लेकिन धन के द्वारा अगर पुण्य कर लिए जाएं तो पुण्य स्थिर हो जाते हैं। इसलिए धन को स्थिर करने की विधि है धन के द्वारा पुण्य करना। मैं कईयों को कहता हूं, एक ये मेरी पर्सनल बात है, बाबा के समय से मैंने सुनी थी, हमारे विलौकिक परिवार ज्ञान में है, मैं उन्हें कहा करता हूं कि हर साल देखो आपके सेंटर में दो गरीब माताएं हैं, कोई भाई हैं जो धन अभाव के कारण बाबा से मिलने नहीं आ पाए हैं 5-7 साल से, उन्हें तुम टिकट देकर यहां भेजो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य होगा। किसी को भगवान से मिला दिया जाए कितना बड़ा पुण्य है। मैं एक छोटी सी बात और कहूं, है तो व्यक्तिगत, मधुबन जब छोटा सा था, ये बात है अब से 35 साल पहले की, थोड़े से मकान थे तो हम लोग जिन कमरों में रहते थे, बाबा का जब सीजन होता था तो हम सबको अपने कमरे खाली करा दिए जाते थे कि यहां पार्टी में आने वाले भाई बहन रहेंगे। हम कहीं भी सो जाते थे, वरांडों में कहीं भी, गर्मी के दिनों में सीजन होता था उन दिनों। हमें बहुत खुशी होती थी कि हमारे कमरों में जहां हम 5 भाई रहते हैं वहां 10 भाई आकर सो गए हैं, जमीन पे सो गए, तो हमारा छोटा सा त्याग कि हमने अपने कमरे खाली कर दिए, 10 आत्माओं को भगवान से मिलाने का आधार बन गया, हमें बहुत खुशी होती थी। भले ही हमें कष्ट होता था, हमें अपना जरा सा सामान लेना तो अंदर जाना है, हमारा सब कुछ उनके कंट्रोल में है अब, लेकिन हम बहुत खुश होते थे। तब से सीखा हुआ था, हमारे वहां ऊपर भी पानी की बहुत कमी होती थी, हम सबको कहा जाता था आधी बाल्टी पानी से ही नहाना है, हम इसे स्वीकार करते थे क्योंकि हमारी जो आधी बाल्टी पानी बचेगा उससे कोई और नहाएगा, उसे सुख मिलेगा, अगर पानी ना हो तो उसको कितनी कठिनाई होगी। हमारा त्याग दूसरों का भाग्य बनाने का आधार है, इसलिए बाबा का महावाक्य है, त्याग से भाग्य बनता है। सभी याद रखेंगे इस जीवन में, त्याग से आत्मा को तेज प्राप्त होता है, त्याग भी बहुत बड़ा बल है। बाबा ने हम सबको सिखा दिया, हमारा त्याग घर बार का त्याग नहीं है, हमारा त्याग भोजन का त्याग नहीं है, हमारा त्याग परिवार का त्याग नहीं है, हमारा त्याग है आसक्तियों का त्याग, हमारा त्याग है कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग, हमारा त्याग है छोटी छोटी हद की इच्छाओं का त्याग, हमारा त्याग है कामनाओं का त्याग, हमारा काम त्याग है दुर्भावनाओं का त्याग। हमारे त्याग की गति दिनों दिन सूक्ष्म होती जाएगी। जिस दिन से हम तपस्या का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा त्याग उसकी गति सूक्ष्म होती जाती है। इस बात पे आप ध्यान दें, और बिल्कुल गहरा रिलेशनशिप है त्याग और तपस्या का, गहरा नाता है। माताएं ध्यान से सुने, बहुत बड़ा त्याग करने के बाद यदि कर्मेंद्रियों के रसों में कोई उलझ कर रह गया तो वो तपस्वी नहीं बन सकते। बहुत आत्माओं के साथ ये हो गया है, वो त्याग करके आ गए हैं। सभी माताएं जो यहां बैठी हैं उन सब का भी बहुत बड़ा त्याग है। आपने बाबा को पाकर बहुत गालियां खाई होंगी, सहन किया होगा, कष्ट पाए होंगे, लोगों ने जो आज तक आपका सम्मान कर रहे थे अपमान किया होगा, आपने सब सुन लिया आराम से। बहुत बड़ा त्याग हर एक का है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं माताओं को धारणाएं अपनाने के लिए बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है, पर ध्यान दें, बहुत बड़े त्याग के बाद यदि तपस्या नहीं होती तो समझ लें हमारा त्याग निष्फल जाता है। इसलिए त्याग वही सफल है जो किसी आत्मा को तपस्वी बना दे। अगर त्याग के बाद तपस्या नहीं है तो त्याग जीवन को नीरस बना सकता है, त्याग जीवन में उदासी ला सकता है, अकेलापन ला सकता है, पछतावा ला सकता है। त्याग किया है सबने तो श्रेष्ठ तपस्वी बनना ही है, त्याग किया है तो त्याग की चमक हमारे जीवन में हमारे चेहरों पर दिखाई देनी ही चाहिए। लोग ऐसा ना कहें, लोग ऐसा ना कहें कि त्याग तो कर दिया लेकिन पाया कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सत्य मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। बहुत आत्माओं के साथ ये हो गया है, बड़ा त्याग करने के बाद, बड़ा, मेरे पास उस त्याग के कोई शब्द भी नहीं, रिमार्केबल त्याग, यादगार त्याग करने के बाद भी कुछ आत्माएं जीवन में खाली रह गई हैं। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, बहुत बड़ा त्याग किया, संसार की सभी इच्छाओं को लात मार दी, सभी वैभवों को ठुकरा दिया, सच्चे संन्यास का मार्ग अपना लिया, परंतु जीवन में तपस्या नहीं हुई, स्वमान जागृत नहीं हुआ, तो जीवन में रौनक नहीं आई है। मैं बहुत थोड़े में कह रहा हूं क्योंकि त्याग का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पर घंटों घंटों बोला जा सकता है, परंतु सभी ध्यान देंगे, त्याग किया है तो कुछ पाकर ही जाएंगे। अपने से बात करें, महान त्याग किया है तो बाबा से सब कुछ पाकर ही रहेंगे। पसंद है भाइयों को? पसंद है ना? तो त्याग सभी के जीवन में एक तेज भर दे, और त्याग को बहुत सूक्ष्मता से लेंगे आप, मोटे रूप से नहीं। विकारों का त्याग प्रथम त्याग, क्रोध का, अहंकार का त्याग बहुत इंपॉर्टेंट त्याग। अहंकार के बारे में मैं आपको एक चीज कहूंगा, अटेंशन दें सभी, अहंकार बहुत बुरा है, ये जीवन में अंधकार लाता है, भटकाव लाता है, टकराव कराता है, अनेक परिवार अहंकार के कारण टकराव की अग्नि में जल के नष्ट हो रहे हैं। अहंकार के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, अटेंशन जो मैं कह रहा हूं, अपने अहंकार के बारे में जानना ही अहंकार के बारे में सच्ची जानकारी है। अहंकार बुरा है ये सत्य है, पर मेरे अंदर वो कहां काम कर रहा है इसकी जानकारी होना ही सच्ची जानकारी है। इसलिए सभी अपने अंदर छुपे हुए अहंकार को पहचानेंगे। इसका सूक्ष्म रूप है मैंपन। भाई लोग ध्यान दें, बुरा तो नहीं लगेगा मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, किसी भाई को रहता है मैं कमाता हूं, मैं न कमाऊं तो परिवार नहीं चलेगा, बच्चों को भी कहते रहते हैं तुम्हें वैल्यू नहीं है, मैं रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, मैं न कमाऊं तो, बात तो बड़ी नेचुरल है, आप कमाते हैं आपका परिवार चलता है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर कल आप न रहें तो क्या नहीं चलेगा, सोचने की बात है। जिनके पास बहुत पैसा है क्या उनके परिवार अच्छे चल रहे हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा है क्या उनके परिवार अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले ही दिनों यूपी से एक रिक्शा चालक के लड़के ने आईएएस किया, एक चाय बनाने वाला ट्रॉली पर जो चाय बेचता था उसके लड़के ने आईएएस किया, और अपने पापा को कहा पापा अब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, अब आप ये चाय बेचो ये अच्छा नहीं रहेगा। और पापा ने क्या उत्तर दिया था, ये सुंदर बात है, गरीबों की बात, उसने कहा बेटा ये चाय बेच बेच के ही तो मैंने तुम्हें कलेक्टर बनाया है, मैं तो चाय ही बेचूंगा। भले उसने उसको वो काम नहीं करने दिया लेकिन उसका उत्तर कितना सुंदर था, वो बाप जो चाय बेच रहा है वो सचमुच बुद्धिमान था या नहीं है। मैंपन का त्याग जीवन में दिव्यता लाएगा, बहुत रूहानियत लाएगा ये मैंपन का त्याग। इसलिए सभी अपने सूक्ष्म अहंकार को पहचाने, मेरे अंदर मैं कहां है, देखिए ये मैं ही है जो इस अलौकिक मार्ग पर चलने वालों को एक सुंदर अनुभूति से वंचित करता है, और वो अनुभूति है समर्पण भाव, जो बाबा पिछली मुरलियों में बार बार कह आए हैं, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। लेकिन मैंपन बेफिक्र बादशाह बनने नहीं देता, मैं जिम्मेदार हूं, मेरे बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा। अगर आप समर्पित भाव अपना लें, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, मेरा सब कुछ तेरा, मेरा परिवार तेरा, मेरे ये बच्चे, मेरा मकान, दुकान, बिजनेस, धन संपत्ति सब तेरी, तुम संभाल लो, देखना जीवन में कितनी सहजता आ जाएगी, समस्याएं कैसे लोप होने लगेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बाबा को सर्वस्व समर्पित करने के बाद विश्वास बहुत होना चाहिए। विश्वास की कमी प्राय सभी में देखी जाती है। विश्वास, भगवान के हाथों में सौंप दी जिंदगी, बस वो वहीं ले जाएगा जहां हमें जाना है, उससे भी आगे ले जाएगा। संपूर्ण विश्वास बाबा की शक्तियों में करते हुए इस मैंपन से सभी मुक्त होते चलें, तो ये त्याग जीवन को तेज से भर देगा, रूहानियत से भरेगा। इस त्याग की झलक दूसरों को दिखाई देगी चेहरों से, और ये त्याग हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कराएगा। तो छोटी बातों पे ध्यान देंगे, खाने पीने की आसक्तियों का त्याग, कितना हम पे कंट्रोल हो जाए कि हम किसी भी खाने पीने की वस्तु के अधीन न हो जाएं। ऐसे नहीं हमारा सारा समय, हमारा अटेंशन, हमारी सूक्ष्म एनर्जी खाने पीने के पीछे चली जाए, माताएं ध्यान देंगी। मैं एक बात और आप सबको कहना चाहता हूं, और आप यहां से सीख कर जाएंगे इस बात को, अपने अपने घर में सभी भाई बहनों को सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं। जिस घर में सुंदर वाइब्रेशंस होंगे वहां समस्याएं नहीं होंगी। समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक बात के लिए मैं अपने सभी भाई बहनों को सावधान करता हूं, आज आपको भी करना चाहता हूं, सभी को याद रहे, जो कुछ 63 जन्मों में हम सब ने किया है, जो कुछ मन से, वचन से, कर्म से, अच्छा बुरा, पाप पुण्य सब, वो सब हमारे वर्तमान ब्रेन में भी प्रिंट है। जैसे आत्मा में सब कुछ नूंधा रहता है, जो कुछ आत्मा में है वो ब्रेन में भी रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। एक प्रश्न का उत्तर भी दे दूं इसी संबंध में, आप सब जानते हैं हर मृत्यु के बाद हमारे शरीर को जला दिया जाता है, ब्रेन भी जल जाता है। तो आम रूप से मनुष्य सोचेगा कि ब्रेन जलने के बाद जो कुछ ब्रेन में प्रिंट था वो भी जल गया, लेकिन जो कुछ ब्रेन में अंकित था वो सूक्ष्म शरीर के ब्रेन में भी प्रिंट रहता है। अब तीन चीजें हो गई, आत्मा में, सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर और ब्रेन में, तीनों में सब कुछ प्रिंट होता रहता है। सत्य तो ये है, अटेंशन से सुन लें, जो बहुत बुद्धिमान और चिंतन करने वाले भाई बहने बैठे हैं, हमारी हर चीज हमारे देह के अंग अंग में भी अंकित होती रहती है। इसलिए एक शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ भी चला जाता है, और जब नए शरीर का निर्माण होता है तो वो सब कुछ नए ब्रेन में, नए शरीर में भी प्रिंट हो जाता है। अब अटेंशन देंगे, हमारे इस ब्रेन में हमारा जन्म जन्म का गुड और बैड, पुण्य और पाप, पवित्रता और विकार सबका प्रभाव सूक्ष्म रूप से अंकित है। अब क्या हो रहा है, चारों ओर बैड एनर्जी, विकारों का प्रकोप, जानते हैं ना सभी, बाबा ने बता दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पांचों विकार और पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो पांचों विकारों के अटैक, अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको जागृत कर रहे हैं। इसलिए संसार में मानसिक रोग और शारीरिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। जिसको मानसिक रोग शारीरिक रोगों से बचकर रहना है, क्लियर है ना बात, सब अंदर जो भरा वो उखड़ रहा है। जैसे कहीं आपके शहर में गंदगी का ढेर हो जाए और म्युनिसिपैलिटी वाले उसे उठाने आए तो पहले बदबू फैल जाएगी ना। अब क्योंकि सफाई का समय है तो उसकी बैड एनर्जी ब्रेन में बहुत काम कर रही है, निगेटिव वाइब्रेशंस। क्या क्या याद रखेंगे, स्वमान के द्वारा हमें अपने चारों ओर शक्तिशाली प्रभा मंडल निर्माण करना है रोज। इससे बाहर की बुरी एनर्जी आपके ब्रेन में प्रवेश नहीं करेगी, सेफ हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप सब देख रहे हैं कि बाबा हमें हर मुरली में एक सुंदर बात कह रहे हैं, सदा खुश रहो। हमारी खुशी के वाइब्रेशंस ब्रेन में ये निगेटिव वाइब्रेशंस को प्रवेश नहीं होने देते। और तीसरी चीज जो बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, वो एक धारणा अपना लें, नो इफेक्ट, सरलता, हल्कापन, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ड्रामा की से एक बात पर बहुत ध्यान देंगे, जो कुछ हो रहा है बोलो वही, फिर से बोलो जो कुछ हो रहा है, रोज याद दिलाना अपने को। और मैं एक चीज रोज सिखाता हूं सबको, रोज सवेरे उठकर जब भी आप उठो 21 बार बहुत अच्छी तरह याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे भूल जाओ, 6 बजे याद कर लेना, मुरली से पहले कर लेना। इससे क्या होगा, चारों ओर शक्तिशाली प्रभा मंडल निर्मित हो जाएगा और इसका बहुत सुंदर प्रभाव दिखाई देगा। ये आदत अभी से सभी जीवन में डाल लें, इसको नेचुरल कर दें, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या संसार के सामने रहेगी और वो है, बढ़ती जा रही है वो, भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप। अगर रोज सवेरे ये अभ्यास कर लेंगे तो कोई भटकती आत्माएं आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी, भयभीत हो। Oh,
लो अपना बसेरा
सवेरे ये अभ्यास कर लेंगे तो कोई भटकती आत्माएं आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी, भयभीत हो जाएंगी। इसको अपनी आदत बनाएं। फिर से आ जाएं हम त्याग पर। कामनाओं का त्याग, बहुत कुछ संग्रह करने की वृत्ति का त्याग। जिसको योगी बनना हो, जिसको महान तपस्वी बनना हो, उसको संग्रह वृत्ति, समझ गए ना, संग्रह बहुत कुछ इकट्ठा करना, इसको छोड़ देना चाहिए। बाबा की साकार में ही बहुत सुंदर परिभाषा है, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। अटेंशन देंगे जीवन में इस बात पर, राजयोग माना मेरा, बात थोड़ी गई है, पर रोज आप, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक राय है, रोज अपने घर में बैठकर सब कुछ देखना अपना और संकल्प करना, ये सब कुछ छोड़कर मुझे जाना होगा। ये सब कुछ जो आज मेरा है वो इससे पहले जन्म में मेरा नहीं था और इससे अगले जन्म में भी मेरा नहीं रहेगा। मेरा कुछ भी नहीं, जिसके अंदर ये धारणा पक्की होती जाएगी उसे ही अनुभूति होगी, नशा चढ़ेगा, मेरा बाबा है। नहीं तो ये बात कहने तक रह जाएगी, कहने से काम नहीं चलेगा मेरा बाबा, गीत गाने से भी काम नहीं चलेगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बहुत गहराई से इसको अपने चित्त में समाना पड़ेगा। तो मेरेपन का त्याग। तीसरा त्याग करेंगे जिसकी बहुत जरूरत है, आंखों के लिए। क्या आंखों के लिए? बहुत ज्यादा टीवी इंटरनेट देखने का त्याग। पसंद है? माताओं को पसंद है? ऐसे तो नहीं घर में है सारा दिन तो कोई काम नहीं, चलो टीवी चलती रहे, भोजन भी बने और टीवी भी चले। सभी याद रखेंगे, जिस घर में सारा दिन टीवी चलती है वहां के वाइब्रेशंस अलौकिक नहीं रह सकते, बच्चों की बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। और एक बहुत सूक्ष्म बात पर सभी ध्यान दें, जो पढ़े लिखे भाई बहने हैं वो इस बात को अटेंशन से सुन लें। सारा दिन हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हमारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी दबकर लोप हो जाएगी। सदा हम दूसरों के प्रभाव में जिएंगे, जो कुछ टीवी में देख रहे हैं उसका प्रभाव, जो सुना उसका प्रभाव। हमारी अपनी जो एक रचनात्मक शक्ति है, हम ऊंचे विचार क्रिएट कर सकते हैं, हम ईश्वरीय नशे आनंद में रह सकते हैं, वो लोप होने लगेगी। इसलिए जिसको अपने जीवन को, परिवार को निर्विघ्न बनाना हो, वो टीवी आदि के व्यसन से बचेंगे। मैं नहीं कहूंगा आप ना देखो, कुछ अच्छी बातें भी आती हैं, आप देख सकते हैं, पर सारा दिन घरों में टीवी चलना माना बीमारियों का आह्वान करना, सोशल लाइफ खत्म करना। और आगे चलें, जिसको महान तपस्वी बनना है उसको व्यर्थ सुनने से परहेज करना चाहिए। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, हमारी बुद्धि टिकती नहीं, हमें शिव बाबा दिखाई नहीं देता, हमें आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं हंसी में उन्हें कहा करता हूं कि बुद्धि में लगता है माल बहुत बढ़ लिया है। माताएं हंसने लगती हैं और कोई कोई तो बोलती है, हाँ सच है, हमने बहुत माल भर लिया है इधर। कौन सा माल, आप समझ गए ना? उस माल को निकालना पड़ेगा, उसको हमने अपना खजाना समझ लिया है ना। जितना व्यर्थ सुनेंगे, ब्रेन में भरे हुए व्यर्थ को जागृत करेंगे, योग नष्ट हो जाएगा, खुशी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिसको योगी बनना है, सिंपल कहावत, आंखें और कान बंद कर लो। समझ गए ना बंद करने का अर्थ? व्यर्थ से मुक्त होना, व्यर्थ में रुचि का त्याग हमें श्रेष्ठ तपस्या की ओर ले चलता है। अपने को सभी महान बनाएं, श्रेष्ठ तपस्या में मगन हो जाएं, सेवा तो हमारा इंतजार कर रही है। ओम शांति।